मेरे जिगरी नौजवान साथियों नमस्कार। AFEIS के आज 21 फरवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। साथ ही दोस्तों स्वागत करता हूं तीन नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 15 से 29 मार्च की क्लासेस के लिए एडमिशन लिया है। ये मित्र हैं नीतिका सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश से, स्नेहलता दिल्ली से और विकास शर्मा नरेला दिल्ली से। फ्रेंड्स आज चूंकि शुक्रवार है और शुक्रवार को मुझे आप सबको नियमित रूप से कुछ सूचनाएं देनी होती हैं, तो पहले मैं वो सूचनाएं देना चाहूंगा कि कल और परसों डेली ऑडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, लेकिन जो प्रेस क्लिपिंग्स हैं वे आपको एज इट इज मिलेंगी शनिवार को। अब जानते हैं कि रविवार को ये सब चीजें उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, लेकिन शनिवार को ही आपको योजना के दो आर्टिकल मिलेंगे, उसमें एक हिंदी का होगा और एक इंग्लिश का, और कुरुक्षेत्र के भी आपको दो आर्टिकल मिलेंगे, एक उसमें से हिंदी का होगा और एक इंग्लिश का। साथ ही आपको एक वीकली क्वेश्चन दिया जाएगा जो मेन एग्जामिनेशन के प्रैक्टिस के लिए है, और हमारे जो क्लास के स्टूडेंट रहे हैं उनके पास स्पेशल ऑडियो गाइडेंस भेजा जाएगा। फ्रेंड्स यहां मैं योजना और कुरुक्षेत्र के आर्टिकल के उपयोग के बारे में थोड़ी सी बातें कहना चाहूंगा क्योंकि इसको लेकर के लगातार मेरे पास मेल आ रहे हैं, और वह यह कि जो योजना और कुरुक्षेत्र के आपको आर्टिकल दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक आर्टिकल 5 पेज का है, आपने महसूस किया होगा कि आर्टिकल काफी बड़े होते हैं, तो आर्टिकल में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक तो उनका साइज बहुत बड़ा होता है और दूसरा जो आर्टिकल लिखे भी जाते हैं वो बहुत ही एकेडमिक किस्म के होते हैं, रिसर्च बेस्ड होते हैं, पूरे बैकग्राउंड को लेकर के लिखे जाते हैं, और सच पूछिए तो पूरा आर्टिकल आपके काम का नहीं होता है, काम का नहीं होता है यानी कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से। बेहतर होगा कि आप एक काम करें कि एक आर्टिकल जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है मान लीजिए, और संयोग की बात है कि देखिए कि क्या इसी टॉपिक पर सिविल सर्विस मेंस में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, पिछले 4-5 साल के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए तो आपको जरूर कोई ना कोई प्रश्न मिल जाएगा। अब आप देखिए कि ये जो प्रश्न पूछा गया है अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ते हैं तो इस प्रश्न के लिए आपको कितनी मदद इस आर्टिकल से मिल रही है और किस तरह की मदद मिल रही है। जब आप कुछ आर्टिकल्स और पूछे गए प्रश्नों के साथ ये काम करेंगे तो आपके अंदर एक दृष्टि विकसित होगी कि जो कुरुक्षेत्र और योजना के आर्टिकल दिए जा रहे हैं उनका उपयोग आपको किस तरीके से करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं दोस्तों कि जो आर्टिकल्स दिए जाते हैं उसमें से हार्डली 10-15% इंफॉर्मेशन ही आपके काम की होती है। देखिए 10-15%, और आप 10-15% को कम मत समझिएगा क्योंकि आपको किसी भी टॉपिक को अपडेट करना है और अपडेट करने का काम योजना और कुरुक्षेत्र के ये आर्टिकल करते हैं, बाकी तो आप उसकी बैकग्राउंड से परिचित हैं ही। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको इन आर्टिकल्स के साथ व्यवहार करना चाहिए। दोस्तों आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आपसे अनुच्छेद 371 के बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए इससे पहले मैं कुछ दूसरी चर्चा आपसे करना चाहूंगा। आपने न्यूज में एक अभियान का नाम सुना, अभियान प्रहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से और मेंस की भी दृष्टि से। प्री के दृष्टि से ये कि पूछा जा सकता है कि ये प्रहार क्या है, तो प्रहार सेना की दृष्टि से भी हो सकता है, प्रहार और भी कुछ दूसरी दृष्टियों से हो सकता है, लेकिन यहां जो प्रहार अभियान का मतलब है ये है जो हमारा नक्सलवादी क्षेत्र है, खासकर छत्तीसगढ़ का नक्सलवादी क्षेत्र, वहां नक्सलवादियों के अगेंस्ट में एक सघन अभियान छेड़ा गया है, उसे कहा गया है प्रहार, यानी कि प्रहार नामक अभियान छेड़ा गया है, और ये जो नक्सलवादी हैं ये बेसिकली माओवादी नक्सलवादी है, तो उनके खिलाफ छेड़ा गया ये अभियान है। और जब आप छत्तीसगढ़ का बकायदे मैप देखेंगे तो पाएंगे कि जो छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का ये जो बॉर्डर एरिया है, यहां नक्सलवादी गतिविधियां बहुत ज्यादा होती हैं क्योंकि वो क्षेत्र बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट का क्षेत्र है, और ऐसे ही क्षेत्र इन नक्सलियों के लिए ज्यादा आदर्श स्थल होते हैं, तो वहां अभियान छेड़ा गया है। यहां मैं थोड़ी सी बात आपको माओवादी के बारे में बताना चाहूंगा। देखिए जब हम कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं तो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं होता, आप देखिए कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इसके बाद है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसके बाद है माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसके बाद है कम्युनिस्ट पार्टी लेनिनवाद, तो ये सब अलग अलग क्या है, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। देखिए जो बेसिक है वो तो मार्क्सवाद है, राइट। मार्क्सवाद ने अपनी जो थ्योरी दी राज्य के नियंत्रण की थ्योरी, एक तरीके के निजी संपत्ति से विहीन राज्य की थ्योरी, सत्ता पर जो सर्वहारा वर्ग है उसके अधिकार की थ्योरी, कार्ल मार्क्स ने दी। और कार्ल मार्क्स की इस थ्योरी को जो प्रैक्टिकली लोगों ने लागू किया तो उनकी अलग अलग थ्योरीज हो गई। कार्ल मार्क्स तो दार्शनिक थे, लेकिन बाद के कुछ लीडर्स ने उस दर्शन शास्त्र को राजनीति पर बाकायदे लागू किया। जैसे कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों से प्रेरित होकर के लेनिन ने रूस में बोल्शेविक क्रांति की और वहां सत्ता पर अधिकार कर लिया। तो उनके इसके बाद उन्होंने जो विचार दिए, जो व्याख्याएं दिया, जिस तरीके से उन्होंने सत्ता पर अधिकार किया और फिर अपनी सत्ता को आगे बढ़ाया, तो वो हो गया मार्क्सवादी लेनिनवाद, है ना। अब वो लेनिनवाद कहना लगे। यही काम चीन में माओ ने किया। माओ ने चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, आप कह लीजिए कम्युनिस्ट शासन की जो स्थापना की और जिस तरीके से अपने विचार दिए, तो वो माओवादी हो गया। तो माओवादी की जो केंद्रीय भाव है माओवादी का, वो ये है, माओ ने बिल्कुल, माओ त्से-तुंग ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जो सत्ता है वो बंदूक की गोली से निकलते, बंदूक की नाल से निकलती है। उस समय 12 बोर की बंदूक हुआ करती थी, उसकी बहुत लंबी नाल होती थी, कि सत्ता कोई आपको ऐसे नहीं दे देगा, है ना, वो युद्ध से मिलेगा, हिंसा से मिलेगा। तो वो बंदूक की नाल से सत्ता निकलती है, यानी कि नाल से जो गोली निकलती है उसके जरिए आप सत्ता को हासिल कर सकते हैं। यानी कि जो माओवादी होते हैं, आप यूं कह सकते हैं मोटे तौर पर, कि हिंसा के समर्थक होते हैं, उनको हिंसा करने में कोई संकोच नहीं होता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने नक्सलवादी माओवादी के बारे में दी है, क्योंकि न्यूज में यह शब्द अवेलेबल था, न्यूज में ऑलरेडी था। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड का है, एमजे एंटनी का लिखा हुआ, सर्वोच्च अदालत में याचिकाओं की भरमार, उपाय की दरकार। तो प्लीज इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा और इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट भी कर लीजिएगा। जो यहाँ खासकर जिस पर मैं हाईलाइट करना चाहूंगा बिंदु पर, और वह यह है कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वह मूलतः एक संवैधानिक अदालत है, मूलतः, ऐसा नहीं कि केवल संवैधानिक अदालत, मूलतः संवैधानिक अदालत है। यानी कि इसका जो काम है वो ये देखे कि कैसे संविधान की रक्षा होनी चाहिए, संविधान की व्याख्या होनी चाहिए, संविधान के खिलाफ अगर कुछ हो रहा है तो बकायदे उस पर वह अपना निर्णय दे। तो इसीलिए कहा गया ये संवैधानिक अदालत है। ये शब्द हो सकता है कि प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के कभी पूछ लिए जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार इन अदालतों को, इस अदालत को उस तरह के निर्णय देने पड़ रहे हैं जिसके लिए पहले से ही अदालत बने हुए हैं, और उसका नतीजा ये हो रहा है कि इस पर बहुत ज्यादा दबाव होता चला जा रहा है। एक आंकड़ा इन्होंने दिया है बहुत इंटरेस्टिंग, कि 2019 में उच्चतम न्यायालय ने 1293 फैसले दिए, मोटे तौर पर 1300 मान लीजिए, शब्द इस्तेमाल करिए, लगभग 1300 फैसले दिए। इस 1300 फैसलों में केवल 43 मामले ऐसे हैं जो सीधे सीधे संविधान से जुड़े हुए हैं। सोच के देखिए, 3.3%। बाकी जो 97%, थोड़ा सा ही कम है, जो मामले हैं वो दूसरी तरह के मामले हैं। और जो दूसरी तरह के भी मामले हैं उसमें एक और भी आप अच्छा आंकड़ा नोट कर सकते हैं। ज्यादा आंकड़ों को नोट करने की जरूरत नहीं, इसमें आंकड़ों की भरमार है। और वो ये है कि 188 फैसले सरकारी नौकरियों से जुड़े हुए हैं, है ना। किसी के प्रमोशन का मामला है, किसी को सस्पेंड कर दिया गया उसका मामला है, किसी के पेंशन का मामला है, इस तरह के मामले हैं 188। और मजेदार बात यह है कि सरकारी नौकरियों से संबंधित, सरकारी अधिकारी कर्मचारियों से जुड़े हुए जो भी मामले हों, उसके लिए आपको मालूम है कि बकायदे प्रशासनिक अधिकरण बनाए गए हैं, उसके लिए ट्रिब्यूनल है। तो फिर ये ट्रिब्यूनल क्या कर रहे हैं? जो मामले ट्रिब्यूनल में ही निपट जाने चाहिए, खत्म हो जाने चाहिए, वो इसका मतलब है कि वहां खत्म नहीं हो रहे हैं। और फिर ये तो है ही है कि जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो चूंकि अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, तो वहां से फैसले होते हैं, और वहां से फैसले होने के बाद इससे जब लोग संतुष्ट नहीं होते तो उच्चतम न्यायालय चले जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि उच्चतम न्यायालय के नीचे के जो अदालत हैं, या तो बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, या वो विश्वास अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, या जो भी कारण हो, और इसके कारण उच्चतम न्यायालय पर लगातार दबाव बढ़ता चला जा रहा है, और उसका जो मुख्य स्वरूप है और जो मुख्य काम है, आप यूं कह लीजिए कि वह धीरे धीरे धुंधला पड़ता चला जा रहा है। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, मैंने जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स हो सकते थे उधर जानबूझकर के आपका ध्यान दिलाया है, ताकि आप फोकस्ड तरीके से इस आर्टिकल का एक बेहतर इस्तेमाल कर सके। दोस्तों, अब मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा अनुच्छेद 371 पर। न्यूज में आपने सुना कि हमारे जो गृह मंत्री जी हैं वो अरुणाचल प्रदेश गए हुए हैं, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना दिवस पर, और उन्होंने बहुत क्लियर कट देश को आश्वस्त किया है, विश्वास दिलाया है, और खासकर उत्तर पूर्व भारत को कि जो अनुच्छेद 371 है वह हटाया नहीं जाएगा। अनुच्छेद 370 आप जानते हैं, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था। अनुच्छेद 370 जब हटा दिया गया तो बहुत से लोगों ने यह आशंका व्यक्त की थी कि अनुच्छेद 371 भी हटाया जा सकता है। अगर 370 को हटा दिया गया है तो 371 भी हटा दिया जाएगा, क्यों ऐसा? यानी कि 370 371 में कहीं ना कहीं तो समानता होगी, तभी ये बात कही गई। ये आपके दिमाग में आना चाहिए जब हम बेसिक्स तैयारी की बात करते हैं कि किसी टॉपिक की बेसिक्स को कैसे समझे, इसी तरह से समझा जाता है। तो चूंकि 370 के जरिए जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया था, इसका मतलब है कि कुछ इसी तरह का संबंध 371 का भी होगा। और यह सच भी है कि 371 के जरिए भी कुछ राज्यों को, और या यूं कह लीजिए कुछ राज्यों को और कुछ राज्यों के विशेष समुदायों को, कुछ राज्यों के विशेष क्षेत्रों को विशेष अधिकार दिए गए हैं। बस तो चूंकि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष अधिकार सब समाप्त कर दिए गए, तो यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि अनुच्छेद 371 को भी समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि इसके तहत भी आपको विशेष अधिकार दिए गए हैं। और इससे पहले के डेली ऑडियो लेक्चर में कई बार मैंने इस तरह से बातें की हैं कि हमारे कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं, हमारे कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं, और भी जो दूसरी तरह के क्षेत्र हैं, वहां कुछ कारणों से उन्हें उनके संस्कृति की रक्षा के लिए, उनकी भाषा की रक्षा के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने बकायदे संविधान में व्यवस्थाएं की हुई हैं, और वो जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो अनुच्छेद 371 के तहत ही की गई है। ये इसका बेसिक्स है। तब किस तरीके की व्यवस्था अलग अलग राज्यों में की गई है, यह इस बात पर डिपेंड करता है कि उन राज्यों में किस तरह के रिक्वायरमेंट थी, और उन रिक्वायरमेंट, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए उस तरह की व्यवस्थाएं हमारे संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत की गई हैं। और उनके केंद्र में यही है कि किस प्रकार से हम वहां के लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो संस्कृति और भाषा और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई हैं, उनको इंटैक्ट रख सके, उनको बचा कर रख सके। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है कि जो मुख्य धारा की जो संस्कृति होती है, या कह लीजिए कि बहुसंख्यक वर्ग जो होता है, डेफिनेटली वो प्रबल होता है, उसका दबाव हमेशा सत्ता पर बना रहेगा, राज्य पर बना रहेगा, राष्ट्र पर बना रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये जो छोटे छोटे समूह हैं, इनका डरना स्वाभाविक है। और जब ये डरेंगे तो क्या होगा, या तो विद्रोह करेंगे, या और जिस तरीके से भी वो अपने आक्रोश की अभिव्यक्ति करें। और उन्हें ऐसा अवसर दिया क्यों जाए, क्योंकि हमारे ही देश के नागरिक हैं, हमारे ही देश के अंग हैं, हमारी लोक परंपरा के समृद्ध वो हिस्से हैं। तो हमारा ये दायित्व तो बनता है, हमारा ये धर्म बनता है कि हम उनकी रक्षा करें, और खासकर एक ऐसी प्रणाली में तो बनता ही बनता है जिसे हम लोकतांत्रिक प्रणाली कहते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली का मतलब ये नहीं होता कि बहुसंख्यक की इतनी शक्ति बढ़ जाए कि अल्पसंख्यकों के का कोई अस्तित्व ही न रह जाए। अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हुए, यानी कि सबकी रक्षा करते हुए जो तंत्र काम करता है, वही मूलभूत रूप से लोकतंत्र होता है। बहुसंख्यक तो केवल एक संसद में सरकार बनाने की प्रक्रिया मात्र है, बहुसंख्यक कोई ऐसा तत्व तो नहीं है जिसकी वजह से वो अल्पसंख्यकों पर हावी हो सके। तो दोस्तों, अनुच्छेद 371 के बारे में आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अच्छी तैयारी होनी चाहिए। इसके बहुत से क्लॉज हैं अनुच्छेद 371 ए बी सी डी ई एफ जी, आप पढ़ते चले जाएंगे। मैं जितना वक्त बचाए मैं थोड़ी सी बातें आपको बताना चाहूंगा, तो इशारे के तौर पर आप समझ जाएंगे मैं जल्दी जल्दी में चर्चा कर रहा हूं। जैसे अनुच्छेद 371, इसके तहत है कि महाराष्ट्र का जो विदर्भ मराठावाड़ा और जो गुजरात का सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र है, उनके विकास के लिए अलग से बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया है। इसी के तहत यह है कि हिमाचल प्रदेश में बाहर के लोग कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, देखिए ताकि वहां के लोगों की भूमि ऐसा न हो कि दूसरों के हाथ में चली जाए। अनुच्छेद 371 ए के तहत यह है कि नागालैंड में नगा लोगों पर संसद का आदेश लागू नहीं होता। सोच के देखिए, नगा लोगों पर संसद का आदेश लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर में भी तो कुछ ऐसे ही मामला था ना, लेकिन राज्य के कानून के तहत उनको सजा मिल सकती है। अनुच्छेद 371 बी ये असम में लागू है। इसके तहत जो राष्ट्रपति हैं, विधानसभा की समितियों में जनजाति सदस्यों को शामिल कर सकते हैं। दूसरी जगह देखिए प्रोविजन नहीं है कि राष्ट्रपति शामिल करे, लेकिन यहां है। अनुच्छेद 371 सी मणिपुर में लागू है, और इसके तहत राष्ट्रपति विधानसभा में पहाड़ी क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों की एक समिति बना सकते हैं। 371 डी के तहत आंध्र तेलंगाना में लागू है ये। नागरिक सेवा के लिए पदों पर नियुक्ति के मामले में ट्रिब्यूनल का गठन किया जा सकता है। 371 एफ सिक्किम में लागू है, वहां राज्य के जो जनजाति इलाके के बाहर के लोग हैं जमीन खरीद ही नहीं सकते। तो इस तरीके से देखिए किस तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों यही इसका मूल चरित्र है, बकायदे बुक्स में आपको ये बातें मिल जाएंगी, मूलभूत तत्व ही बताना मेरा उद्देश्य था। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस पर आप थोड़ी सी अच्छी से तैयारी कर लें, प्री एग्जामिनेशन में इस पर प्रश्न पूछे जाने की संभावना अब थोड़ी सी बन गई है। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही, न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम है, पुनील कुमार, मानसी प्रजापति, गौरव अवस्थी उत्तर प्रदेश से, दीक्षा शर्मा, निहाल सेठ बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, वीर मंगल दत्ता त्रिपुरा से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसमें मैं पुनील कुमार जो हमारे 10th बैच के स्टूडेंट रहे हैं, अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से, अपनी ओर से और अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि उनका जो सिलेक्शन है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए हो गया है। हम सब की ओर से पुनील बहुत बहुत शुभकामनाएं भी कि आप जीवन में खूब और आगे बढ़ें। तो दोस्तों इसी के साथ ही अब इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करना चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, 2 दिनों के लिए फिर मुलाकात होगी और ढेर सारी बातें होंगी। नमस्कार।